नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबीसी। वैश्विक महामारी के इस दौर में हमने इस वायरस को लेकर बहुत कुछ सीखा और सुना है। इससे बचने के उपाय, इस बीमारी से जुड़े डूज और डोंट्स के बारे में कई दफा विस्तार से बात की है। इसमें कोई शक नहीं कि कोविड काल में हमारे जीने का तरीका काफी हद तक बदल चुका है। कुछ नई आदतें डालनी पड़ी हैं, कुछ पुराने चलन छोड़ने पड़े हैं। बावजूद इसके, कोरोना वायरस के एक के बाद एक आते नए म्यूटेंट्स ने चिंता को बरकरार रखा है, इसलिए लगातार शोध और गाइडलाइंस में बदलाव भी लाजमी है। चलिए, आज का न्यूज मेकर में हम फिर दो बड़े महत्वपूर्ण विषयों की बात करेंगे। पहला, कोविड काल में कुछ नए तथ्यों के उजागर होने के बाद बदली हुई गाइडलाइंस की, और साथ ही ब्लैक फंगस के बाद एक नई चुनौती बनकर उभर रहे व्हाइट फंगस बीमारी की। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज मेकर, ध्यान से सुने और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। कोरोना वायरस बेहद तेजी से संक्रमण के तौर पर फैलता है, ये सबको पता है, मगर कैसे, किस जरिए, इसको लेकर लगातार रिसर्च होती रही है। शुरू से इस बारे में बहस रही कि क्या कोरोना वायरस हवा के जरिए फैलता है। इस बारे में अलग अलग तरह के तथ्य सामने आए, पर अब सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए फैल सकता है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के मुताबिक, एरोसोल और ड्रॉपलेट्स कोरोना वायरस को फैलाने का प्रमुख जरिया होते हैं। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स हवा में 2 मीटर तक जा सकते हैं, जबकि एरोसोल उन ड्रॉपलेट्स को 10 मीटर तक आगे बढ़ा सकता है और संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। यहाँ तक कि संक्रमित व्यक्ति जिसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे, वो भी वायरल लोड बनाने लायक पर्याप्त ड्रॉपलेट्स हवा में छोड़ सकता है, जो कई अन्य लोगों को संक्रमित बना सकता है। मतलब साफ है कि अब कोरोना से बचने के लिए 10 मीटर की दूरी भी पर्याप्त नहीं है। इस बारे में वैज्ञानिक सलाहकार दफ्तर कहता है कि संक्रमित व्यक्ति के सांस छोड़ने, बोलने, गाने, हंसने, खांसने और छींकने से लार और नाक से निकलने वाले स्राव में वायरस निकलता है, जो दूसरों को संक्रमित बना सकता है। इसीलिए संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए अब की बार सेकेंड वेव में कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना बहुत जरूरी है। मास्क पहनना, सुरक्षित शारीरिक दूरी रखना और हाथों को धोते रहना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी संक्रमित व्यक्ति में लक्षण दिखने में 2 सप्ताह तक का वक्त लग सकता है और इस दौरान वो कई औरों को संक्रमित करता है। इसके अलावा कुछ लोगों में लक्षण नहीं दिखते, फिर भी वायरस फैल सकता है। सरकार की नई गाइडलाइन में ये साफ साफ कहा गया कि बंद और गैर हवादार इंडोर जगहों पर ड्रॉपलेट्स और एरोसोल कोरोना वायरस के फैलाव के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा रहा है, जबकि वेंटिलेशन वाली जगहों पर या आउटडोर जगहों पर संक्रमण फैलने का खतरा बनिस्पत कम होता है। चलिए आपको ये बताते हैं कि ये ड्रॉपलेट्स और एरोसोल क्या होते हैं। हमारे मुंह और नाक से निकलने वाली नमीयुक्त बारीक बारीक बूंदें ड्रॉपलेट्स कहलाती हैं, जबकि हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस के अलावा हर तरह के सूक्ष्म कणों को एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल को आप सामान्य भाषा में हवा में पाए जाने वाले तरह तरह के कणों के तौर पर समझ सकते हैं। एक और स्टडी में ये बात भी साफ हो चुकी है कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनती काम करता है, मसलन अगर कोई व्यायाम करता है, वेट ट्रेनिंग करता है और वो भी किसी बंद कमरे या बंद जगह पर, तो पसीने, मुंह की लार, नाक से ज्यादा मात्रा में बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, जो हवा में बड़ी मात्रा में एरोसोल बनाते हैं और ऐसे में ये कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने में कई गुना खतरा बढ़ा देते हैं। शोध ये कहता है कि जिम या व्यायाम करने पर सामान्य अवस्था की तुलना में कोई भी व्यक्ति 50% ज्यादा एरोसोल बनाता है। ऑनलाइन चेस्ट जनरल में प्रकाशित आलेख के मुताबिक इसे सैकड़ों लोगों में प्रयोग के बाद सही पाया गया और इसलिए कोरोना काल में देश या विदेश जिम को बंद रखने बाबत गाइडलाइन जारी की जाती रही है। वैसे एक सुकून देने वाली बात यह है कि आज के दौर में हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर हैपा उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है, जो एरोसोल को फिल्टर कर सकता है और कई संस्थानों ने इसका प्रयोग शुरू भी कर दिया है। अब आते हैं दूसरी चिंताजनक खबर पर। कोविड काल में एक के बाद एक तेजी से फैलते इन्फेक्शंस ने डॉक्टर और मरीजों दोनों को परेशान किया। बीते दिनों पोस्ट कोविड यानी कोरोना हो जाने के बाद ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोर माइकोसिस के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब एक और फंगल इन्फेक्शन चर्चा में आया है, वो है व्हाइट फंगस। चिंता की बात ये कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये बीमारी ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। व्हाइट फंगस से फेफड़ों के संक्रमण के अलावा शरीर के दूसरे अंग जैसे नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स और मुंह के अंदर भी संक्रमण फैल सकता है। इस बीमारी की पहचान करना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वाइट फंगस के मरीजों में कोरोना जैसे ही लक्षण होते हैं। वाइट फंगस फेफड़ों में संक्रमण को फैलाता है, इसीलिए उसके लक्षण कोरोना के जैसे ही होते हैं, और इसीलिए इन दोनों बीमारियों के बीच अंतर कर पाना थोड़ा कठिन काम है। दरअसल ये फंगस उन मरीजों में पाया गया जिनमें कोरोना की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन संक्रमण के सारे लक्षण वैसे ही थे जैसे कोविड मरीजों में दिखते हैं। एक और बात, कोरोना से पीड़ित मरीजों में ये संक्रमण ज्यादा देखा गया। वे कोरोना मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे हैं उनके फेफड़ों में ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। जांच के बाद बीमारी पहचानने पर मरीज एंटी फंगल दवाओं से ठीक हो रहे हैं। देश में अभी पटना इसका एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। एक्सपर्ट डॉक्टर कहते हैं कि व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस की तरह कमजोर इम्यून पावर वाले व्यक्तियों में ही अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए जरूरी है कि कोरोना काल में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने का हर मुमकिन तरीका हम अपनाएं। आज का ये न्यूज़मेकर आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।